इसके बाद अगली बात जो है तो दुआ पे, लेकिन दुआ खास तौर पे दुआ का जिक्र यहाँ पे आया जहां पे रमजान की बात आ रही है। तो जब दुआ का आप यहाँ पे देखते हैं तो इसका मतलब दुआ का भी कोई कनेक्शन है ना रमजान के साथ। और आपको पता है कि कितना बड़ा कनेक्शन है कि रोजेदार की दुआएं कबूल होती हैं, खास तौर पे जब वो इफ्तार के वक्त दुआ करता है तो उसकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है। जिन तीन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं उनमें एक रोजेदार भी है। तो समझ लें कि फिर रोजेदार को कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दे दी कि उसके लिए पहले ही वादा फरमा दिया कि वो इसकी दुआएं कबूल है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अब इस आयत का थोड़ा सा पहले शान नजूल आप सुन लें। नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आए और एक एक ने पूछा, क्या हमारा रब करीब है? करीब है तो हम आहिस्ता आहिस्ता उससे बात कर लें, या वो दूर है हमसे? अगर दूर हो तो फिर हम ऊंची ऊंची आवाजों से उसको पुकारे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उस पर यह आयत उतरी। दूसरी एक और रिवायत में आता है कि सहाबा के इस सवाल के ऊपर कि हमारा रब कहाँ है, तब ये आयत उतरी। एक और रिवायत आती है कि जब आयत उतरी उदउनी यस्तजिब लकुम, ये नाजिल हुई यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं, तो लोगों ने पूछा दुआ किस वक्त करनी चाहिए, उस पर ये आयत उतरी। समझ आई अब आपको बात? यानी इंसान सोचता है ना कि अल्लाह ताला कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, करीब है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करूं, दूर है तो फिर जोर जोर से करूं, या किस टाइम पे करूं, कब करनी चाहिए, कब उसको पुकारना चाहिए, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स है या नहीं है। ठीक है, तो इस पे ये जस अब लोग सवाल कर रहे हैं ना, तो इस पे ये जवाब आया, वा इजा सअलक इबादी अन्नी, जब सवाल करें मेरे बंदे मेरे बारे में। जब अल्लाह ताला किसी को कह दे ना मेरा बंदा है, तो ये बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को बंदा अब्द कह के पुकारा है कुरान पाक, और अब्दियत का मकाम बहुत ऊंचा है। यानी किसी जगह पे भी गुलामी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं समझी जाती ना, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे गुलामी सबसे बड़ी चीज है, और वो है अल्लाह का गुलाम कोई बन जाए। इंसानों के गुलाम बनने में जिल्लत है, अल्लाह के गुलाम बनने में इज्जत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मेरे बंदे, और फिर फरमाते हैं मेरे हैं ये बंदे, मेरे बारे में सवाल करें। अच्छा, पहले तो ये इदा का लफ्ज आया, इदा से अलग का, जब सवाल करें, इद और इद इदा में फर्क है। इद व्हेनेवर, उसमें माजी की बात की गई, और इदा फ्यूचर की बात के लिए आता है कि जब जब भी वो मेरे से मेरे बारे में पूछें। दूसरे यानी पूछते थे नहीं, जब पूछें। दूसरे ये कि अगर में और जब में भी फर्क है। अगर यहाँ पे नहीं कहा गया कि अगर मेरे बारे में पूछे तो उनको बता देना, ये था ना सेंटेंस, अगर पूछे, जब पूछे यानी वो पूछेंगे मेरे बारे में, है ना। अल्लाह ताला ने अगर में होता है ना चांस के, अगर पूछा तो ठीक है, अगर नहीं पूछा तो नहीं। जब में क्या होता है कि जरूर पूछेंगे। तो अल्लाह ताला ने जब का लफ्ज लाके बता दिया कि इंसान यानी उसका अल्लाह ताला के साथ जो एक कनेक्शन की बात है ना, वो बताइए कि जब मेरे बारे में पूछता है कि वो पूछेगा मेरे बारे में जरूर, और जब पूछे अन्नी मेरे बारे में, यानी ये जो सवाल आए हैं, तो अब कैसे इस बात को कहेंगे आप, वैसे अपने जुबान में बोलें कि जब पूछे तो उनसे कह देना कि मैं करीब। ठीक है, यही बनता है ना, तो उनसे कह देना फकुल। और जगहों पे भी आया, जब लोगों ने सवाल किया तो फिर आया कि वो ये सवाल करते हैं, ए नबी आप कह दीजिए उनको, कुल की साथ बहुत सारी आयतें हैं। यहां पे कुल नहीं आया, अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला उस बंदे से डायरेक्ट बात करें, फइन्नी करीब, तो बेशक मैं करीब हूं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हटा दिया, जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में पूछेंगे ना, यानी इनको मेरे से इतनी मोहब्बत है कि वो मेरे बारे में जरूर आपसे सवाल करेंगे, तो जब भी करें तो आपने नहीं कहना, मैं खुद उनको कहता हूं मैं करीब हूं। करीब से इंसान को इतना हौसला मिलता है कि अल्लाह मेरे से करीब है। हुआ माकुम अईना माकुम, तुम वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं पे भी हो, ये इंसान को कितनी तसल्ली देता है। नहीं, अल्लाह मुझसे दूर नहीं है, लेकिन दूर हो तो फिर इंसान सोचता है पता नहीं सुनेगा भी कि नहीं, जो करीब हो तो फिर उसका क्या है? उसको तो जब पुकारेंगे वो सुन रहा है ना। और कितना फरमाया, कितने करीब है अल्लाह ताला, शहरग से भी ज्यादा करीब। अल्लाह तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, यानी इतने करीब है तुमसे। अब इसके बाद इंसान फिर डाउट करे, फिर इंसान का दिल तसल्ली ना पाए, क्या इसे तसल्ली नहीं हो जानी चाहिए? इंसान को खुशी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह तू इतना करीब है मेरे, मैं क्या चीज हूं, रब्बे कायनात, और ये वो इतना बड़ा, और ये एक जर्रा है, और हर एक के करीब है, हर एक के। अब ये कैसा फील होता है सोचें, अगर इंसान ये सोचे इस बात को, तो फीलिंग कैसी आती है कि वो करीब है। शैतान कहता नहीं दूर है, वो कहाँ सुनेगा तुम्हारी, तुम तो इतने गुनाहगार हो, आए मुझसे इतने गुनाह हो गए, मेरी तो जिंदगी इसमें गुजरी, मेरी कहाँ सुनी जाएगी। यही है मायूसी, यही है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, और इसी से शैतान खुश होता है। इंसान जब ये सोचता है ना अल्लाह मुझसे करीब है, तो फिर वो सरगोशी करे, ऊंची आवाज में बोले, किसी तरह बोले, उसको पता है मेरा अल्लाह मुझे मुझे सुन रहा है, और अल्लाह सुनता है, क्योंकि आगे ही आया, उजीबु दावत दाई दान, मैं जवाब देता हूं पुकार का, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी बात का जवाब देता हूं, मैं उसकी बात को सुनता है तो जवाब देता है ना। जब भी पुकारने वाला, उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूं पुकारने वाले की, इदा दानी, जब मुझे पुकारता है, ये भी नहीं, यहां पे भी नहीं कहा गया अगर वो मुझे पुकारे, नहीं, जब भी पुकारेगा, यानी वो पुकारेगा जरूर, और जब भी पुकारेगा। ऐसा नहीं है कि अभी रात का टाइम है तो अभी नहीं अल्लाह को पुकार सकते, अभी जवाल का वक्त है अभी नहीं पुकार सकते, आज फलां दिन है आज नहीं पुकार सकते, कल पुकारेंगे या उस वक्त। देखिए आप खुद सोचें, जब इंसानों के साथ कोई मामला होता है ना, कोई बड़ा आदमी होता है, उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट किसके टाइम के मुताबिक होती है, उसके, क्योंकि वो बड़ा आदमी होता है, वो बड़े ओहदे पे होता है, आप उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर उसके लेके भी 5 मिनट पहले जाके वहां पे बैठ जाते हैं, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी घर से निकलते हैं, ये तमाम करते हैं। अल्लाह ताला के पुकारने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि जिसमें हो, या इस वक्त रात आधी हो, कभी कभी ऐसे होता है, आपके साथ भी हो सकता है, कभी हुआ हो, आप कभी बीमार होते हैं, रात आधी होती है, आप किसको जगाएं, किसको तकलीफ दें, किसको कहें, होता है ना, कोई भी, चाहे आपके साथ ही कोई लेटा हो, कोई भी 24/7 आपके लिए हाजिर नहीं रह सकता, या किसी वक्त भी आप बोलेंगे तो वो आपकी सुनने लगे, किसी के आराम का वक्त है, और जितना कोई बड़ा होता है उतना तो उससे मिलना और भी मुश्किल होता है, जितनी किसी का ओहदा बड़ा है, जितना किसी का मकाम बड़ा है, उतना ही ज्यादा आपको देख के चलना पड़ता है कि भाई किस वक्त साहब या ऑफिसर साहब, और वो भी अपॉइंटमेंट से, आप देखते हैं जो जितने बड़े डॉक्टर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट क्या, आप आज बीमार हैं वो महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं। फिर आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाएं, वो आज आपको जरूरत है ना, वो कहते नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, फलां दिन में आना, उस वक्त तक शायद आपको जरूरत भी ना रहे। तो हर एक के लिए आपको टाइम देखना पड़ता है, इवन किसी को कॉल भी करते हैं ना, तो आगे से क्या मिलता है, नहीं वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, नहीं उनके पास लोग बैठे हुए हैं, नहीं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, कोई आपके लिए भी 24/7 नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते, जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता, मैं जवाब देता हूं, सिर्फ सुनता नहीं है, मैं जवाब देता हूं। अल्लाह ताला बंदे की बात का जवाब देता है, इसीलिए आप सरसर ने बताया तुम अपनी हर हाजत का सवाल अल्लाह से करो, इवन जूती का तस्मा भी टूट जाए ना, यानी इतनी छोटी सी चीज है, उसको भी अल्लाह से मांगो। और वैसे तो कुछ औकात ऐसे हैं जिसके अंदर दुआएं ज्यादा कबूल होती है, मसलन जुमे की घड़ियां हैं, मसलन रात का एक तहाई जो आखिर का हिस्सा है, इस तरह कुछ है, मसलन इफ्तार का वक्त है रोजेदार के लिए, लेकिन ये नहीं कहा गया सिर्फ उस वक्त सुनता है बाकी वक्त नहीं, नहीं, जब भी तुम पुकारोगे, जब भी तुम हाथ उठाओगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे आगे हाथ उठाता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं इसको खाली हाथ कैसे लौटाऊं। मुझे शर्म आती, मुझे हया आती है कि मैं अपने बंदों को खाली लौटा दूं। इसका मतलब जब भी इंसान मांगता है अल्लाह कुछ दे के भेजता है, खाली नहीं भेजता। हाँ ये अलग बात है कि हम जब कहते हैं ना हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, दुआ नहीं कबूल हो रही, तो दुआ कबूल होने का मतलब हम क्या समझते हैं? हमने ये समझा है कि जो चीज बस मुझे चाहिए वो ही मिलेगी तो दुआ कबूल होगी, वरना नहीं हो रही। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा भी अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें ना गुनाह हो ना कतह रहनी हो, यानी रिश्तों को तोड़ने की बात ना हो, गुनाह की बात ना हो कि अल्लाह मुझे गुनाह के लिए कोई और ऐसी ऐसी कोई जॉब दे दे जिसके अंदर कोई सूद है, कोई हराम है, या ऐसी कोई चीज कर दे जिसमें रिश्ते को टूटना है, या अल्लाह इसको तो मेरे से दूर कर दे, या इसको ऐसे कर दे, वो ना हो। तो अगर ये नहीं है ना उस दुआ में, ये दो चीजें गुनाह और कतई रहनी, तो अल्लाह ताला तीन में से एक जरूर चीज देता है उसको, तीन में से एक जरूर चीज उसको देता है। नंबर वन, या तो उसकी दुआ को एज इट इज पूरी कर देता है, जैसे उसने मांगी वैसे ही हो गया, या अल्लाह उसको जखीरा करके छोड़ देता है, आखरत में अता करेगा। और आखरत में क्या होगा, इंसान जब देखेगा ना कि ये इतना बड़ा बड़ा मुझे अजर मिल रहा है, इतने बड़े मेरे दर्जात हो रहे हैं, तो वो पूछेगा कि या अल्लाह किस बात का, कौन सी मैंने ऐसी नेकी की है। उस वक्त उसको कहा जाएगा ये वो दुआएं हैं, उनका इनाम है जो तुम्हारी दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। तो वो कहेगा या अल्लाह काश ऐसा होता कि मेरी दुनिया में तो कोई भी ना दुआ कबूल करता, सारे यहां पे मुझे इतने जबरदस्त इनाम मिलने थे इसके। तो या तो अल्लाह ताला उसको ये दे देगा कि आखरत के लिए उसको रख लेगा उसकी दुआ को, और वहां पे बड़े बड़े इनाम आते का। नंबर थ्री, या फिर कोई बला थी, कोई मुसीबत थी, अल्लाह ताला वो टाल देता है। जैसे हम होता है ना, हम कभी अल्लाह रहम करे कोई एक्सीडेंट होने लगता है तो हम कहते हैं पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई, तो वो कोई नेकी हो नहीं, हो सकता है कि कोई दुआ जो आपकी वैसे कबूल ना हुई हो उसकी, उसको अल्लाह ने रखा हो कि आपसे ये मुसीबत टाल दे, ये एक्सीडेंट हो जाना था, ये बीमारी आपको कोई लगने लगी थी, अल्लाह ने वो बीमारी टाल दी, आपके घर में कोई मुसीबत होने वाली थी, कोई मसला पड़ने वाला था, अल्लाह ने वो मसला तो मैं नजर नहीं आया, बाज चीजें तो नजर आ जाती हैं, कोई एक्सीडेंट होने ही होने वाला था वो नजर आ गया, कहीं आगे कोई हादसा होने वाला था, अल्लाह ने हमें घर से देर से निकाला ताकि वो हादसे में ना हम जाके पड़ जाए, अल्लाह तला ने हमें बचा दी मगर हमें पता ही नहीं चला, वो बीमारी लगनी थी हमें कौन सा पता चला, जब बच जाते हैं तो तब थोड़ी पता चलता है, लगती है तो पता चलता है। तो हम उसको रियलाइज ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने कितनी बला, कितनी बड़ी मुसीबत टाल दी, वो मुसीबतें आ रही थी हमारी तरफ लेकिन अल्लाह ने टाल दी, वो उस दुआ की वजह से, वो जो मैं चीज मांग रही थी वो तो नहीं अल्लाह ने दी, उसकी वजह से ये टाल दी। तो सुभान अल्लाह कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो लोगों ने जब ये हदीस सुनी ना तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह फिर तो हम बहुत दुआएं मांगा करेंगे, बहुत दुआएं मांगा, कहती है तो मुफ्त में ही मिल रहा है भाई, यहाँ तो मुसीबत टल जाएगी, या आखिरत में अच्छा कुछ मिल जाएगा, या हम दुनिया में दुआ पूरी हो जाएगी तो और हमें क्या चाहिए। आपने फरमाया कि हाँ फिर अल्लाह के यहाँ तो कोई कमी नहीं। बाज लोग कहते हैं हाँ ये तो आप तो इतनी लंबी दुआ करती हैं इतनी, ओ भाई ये तो छोटी है, हमें तो इससे बहुत ज्यादा करनी चाहिए, बहुत ज्यादा, दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो। दुआएं ना दो तरह से मांगा करें, एक जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, दो तरह से एक बात कही गई है, दुआएं दो तरह से मांगे। ये मसलन आपको एक मिसाल देते हैं, अल्लाह आफियत अता फरमा, अल्लाह हर तरह के हादसात से महफूज है। अब देखें आफियत तो यही मतलब है, हर तरह के हादसात से महफूज, लेकिन आपने वो भी कहा वो भी कहा, यानी अल्लाह से बात करते रहे, अपना कनेक्शन जोड़े रहे रखे, अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना, अल्लाह इनको हर बुराई से महफूज रख। तो आपने दोनों तरह से नेगेटिव को भी दूर किया और पॉजिटिव की भी बात की। तो अपनी दुआएं मांगे, जितना वक्त आपका दुआओं में गुजरता है वो सब इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ जो है ना मुखल इबादा है, मगज है इबादत का, सिर्फ इबादत नहीं इबादत का निचोड़ है। हम सोचते हैं दुआ फालतू चीज है, वो तो बात की है मैं जल्दी से ये कुरान पढ़ लूँ, मैं ये जल्दी से ये नफल पढ़ लूँ, मैं जल्दी से ये तस्बीह कर लूँ, नहीं, लेकिन दुआ निचोड़ है सारी इबादत का। एक्सेप्ट के एक हदीस में आता है कि जिस बंदे को कुरान इतना मशगूल कर दे कि उसको दुआ करने का भी नहीं टाइम मिलता, वो इतना कुरान के साथ उसका वक्त है, इतना उसको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो दुआ करे, तो अल्लाह उसको उससे भी ज्यादा अता करता है जो दुआ करने पे उसको मिलना था। सिर्फ एक पे एक्सेप्शन है, बाकी सब चीजों के लिए कि आप दुआ करें, तो दुआ करने में पाकी चाहिए, ना पाकी में भी तो कर सकते हैं। वुजू चाहिए दुआ के लिए, नहीं वुजू की भी नहीं जरूरत है, तो फिर देर किस बात की है? दुआ के लिए बोलना पड़ता है? नहीं, आप बेशक दिल में मांगते रहे, आप दुआ के लिए अकेले होना पड़ता है? नहीं, आप मजलिस में बैठे हैं, आप दिलों दिल में दुआएं करते जा रहे, क्या इसके अंदर है? आप दुआ के लिए टाइम देखना पड़ता है, अल्लाह ताला इस वक्त नाउज़ुबिल्ला अवेलेबल है या नहीं मेरे लिए? नहीं, तो फिर क्या चीज हमें रोकती है दुआ करने से? क्यों नहीं फिर हम मांगते? हमारी अपनी जरूरतें हैं, फिर भी नहीं हम मांगते दुआएं? कहते हैं मांगनी नहीं आती। मांगनी क्यों नहीं आती? लगता है आपकी कोई भी जरूरत नहीं, इतनी थोड़ी जरूरतें हैं कि बस 2 मिनट दुआ मांगी और बस छोड़ दी। जब दुआ के लिए जरूरी भी नहीं है कि आप मुसल्ले पे बैठे, तो फिर क्या चीज है मुश्किल? ड्राइव कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, दिल ही दिल में बोलते जाए ना, जोर से बोले, बोलने में जोर से बोलने में भी कभी रियाकारी हो सकती है, दिल ही दिल में मांगते जाए, लेकिन मांगे अल्लाह के दर के हमेशा फकीर रहे। अल्लाह के दर के फकीर होना बहुत बड़ी सआदत है, और यही कहें कि अल्लाह मुझे अपने दर का फकीर ही रखना, कि मैं हमेशा तुझसे मांगती रहूं, कभी इससे दूर ना जाऊं। वो कौन सी चीज है जो कि इंसान की दुआ की कबूलियत में हायल हो जाती है? दुआ नहीं कबूल होती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई आदमी दुआ में जल्दी ना करे उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। तो साहबा ने पूछा, या रसूल जल्दी करना क्या है? आपने फरमाया कि इंसान कहता है कि मैं तो मांगता रहा, मेरी दुआ ही नहीं कबूल हुई, यानी ये कह के उसने मांगना ही छोड़ दिया, हम क्या करें, पूरी तो होती नहीं, तो ये जल्दबाजी है। इसी तरह हराम लुकमा जो है ना, वो भी दुआओं के रास्ते में हायल हो जाता है। इसी तरह ना उम्मीदी के साथ दुआ करना, ना उम्मीदी कि पता नहीं कबूल भी होनी है कि नहीं, चलो अगर हो गई तो ठीक है, मैं मांग लेती हूँ, सुना इस वक्त कबूल होती है, लेकिन पता नहीं भाई हमारी तो नहीं कभी कभी कबूल हुई। इस तरह की बातें करना, मायूसी की बातें करना, अगर आप ऐसी बात करेंगे ना तो कभी कबूल नहीं होगी। यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह सुन रहा है, जब कुरान कह रहा है उजीबु दावत दाईजा दान, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है जो सच्चों का सच्चा है, आपकी बात झूठ हो सकती है, अल्लाह की बात झूठी नहीं है, वो फरमाता है मैं जवाब देता हूं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कभी यह कलमा ना कहें, हमारी तो कभी कुछ सुनी नहीं जाती, हमारी नहीं कबूल होती दुआएं। तो कौन कौन सी बातें हैं जो दुआओं के रास्ते में हायल होती हैं, उन बातों को दूर करें ना आप। फिर इसी तरह गाफिल इंसान की दुआ नहीं कबूल होती, यानी आपका दुआ इधर मांग रहे हैं और ध्यान कहीं और है, दिमाग में कुछ और चीजें घूम रही हैं, कॉपियों की कॉपियां रखी हुई हैं, उनको फिनिश कर रहे हैं कि दुआएं ये सारी मैंने पढ़ लेनी। लेकिन अब पढ़ने में और मांगने में फर्क है ना, मांग उस चीज की होती है जिसकी इंसान को जरूरत हो, अपनी जरूरत दिखाएं अल्लाह को, अपनी तलब दिखाएं अल्लाह को कि अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए। अगर ऐसे है कि इतनी गफलत है, ध्यान अफतारी में है और दुआओं के लिए हाथ उठाए, या किताबें हैं तो उनमें से पढ़ना है जिनका ना कुछ समझ आ रही है कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे दुआ कबूल होगी? या तवाफ कर रहे हैं तो किताबों की किताबें खोली हुई। असल चीज है कि इंसान अपनी जरूरत को जैसे खुद समझता है ना, कोई और नहीं समझता, इसलिए इंसान अपनी जरूरत खुद अपने अल्लाह के आगे रखे। और अल्लाह से बात करने के लिए जब कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, जब कोई फॉर्मेलिटीज ही नहीं चाहिए, तो सबसे ज्यादा आसान है उसके साथ बात करना। देखिए आप किसी बड़े के साथ बात करते हैं ना, आपको ये होता है भाई इतना बड़ा आदमी है, पता नहीं किस तरह से बात करूं, कैसे शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी। अल्लाह के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई सबसे इजी अल्लाह के साथ बात करना। क्या देखें जिसको जिसके लिए कोई अल्फाज भी नहीं ना चाहिए, उसके लिए तो बात उसके साथ तो बात करना सबसे इजी है। आप देखते हैं कि बच्चा है, उसको बोलना नहीं आता, वो कैसे अपनी माँ को सुनाता है अपनी हाजत, रो के, है ना, रो के सुनाता है, रोने में कोई वर्ड्स नहीं है, रो के ही बता दे अल्लाह को, वो आपके दिल की तड़प तो जानता ही है, कि क्या आपको चाहिए, वो आपके आंसू देख लेता है। इसको बख्शीश चाहिए, इसको मेरी रजा चाहिए, इसको मेरी मोहब्बत चाहिए। वो ये देखता है, उसको आपके दिल की आवाज सुनाई देती है। कोई और ऐसा नहीं है जिसको आपके दिल की आवाज सुनाई देते। फिर भी नहीं हम उससे बात करते, फिर भी ना उससे मांगे, फिर भी उसके आगे ना रखें अपनी हाजतें और कहें कि कोई और है जिसके पास जाओ, उस दरगाह पे जाके मांगोगे तो वहां पे मिलेगा। जबकि रब कह रहा है इजा दआनी, जब भी मुझे पुकारे, जब पुकारता है, जब वो खुद डायरेक्ट सुन रहा है, तो फिर तुम क्यों जाते हो कहीं और, क्यों उनसे मांगते हो, क्यों कहते हो कि इन इन जगहों पे धागा बांधेंगे, इस जगह पे मन्नत मांगेंगे, इस जगह पे देग चढ़ाएंगे, इस जगह पे नजराना देंगे, तब जाके हमारी सुनी जाएगी। हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, उनके आगे क्यों रखते हो, जब वो कहता है मैं तुमसे करीब हूं। तुम कहीं फ्लाई करके जाओगे, कहीं जाओगे किसी की जगह पे जाओगे तो कहीं उठ के चलना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा। वो कहता है मैं तुमसे करीब हूं, तुम घर बैठे मांग सकते हो, तुम उसको छोड़ देते हो। कितना जुल्म है ये बताएं, और ये जुल्म हम करते हैं। कुछ अरसा अल्लाह से मांगी, फिर उसके बाद नहीं, यहां पे तो नहीं बात बन रही। वो कराएगा आपका काम जो अल्लाह ने नहीं किया, तो वो दूसरा करा देगा। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे गालिबन कि उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, और उनको नसीहत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ मेरे बेटे, कभी किसी से कुछ ना मांगना सिवाय अल्लाह के, कभी किसी से कुछ ना मांगना। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके नुकसान नहीं दे सकती, और अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे पूरी दुनिया मिलके नफा नहीं दे सकती, तो फिर किसी और के पास क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या वो नफा दे देगा अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो? क्या वो काम कराएगा जो अल्लाह नहीं चाहता करना? इसलिए इस चीज का यकीन रखना कि अल्लाह मेरे करीब है, वो मेरी सुन रहा है, ये आपको कभी मायूस नहीं होने देगा। अल्लाह मुझे जवाब देता है। इस आयत के ऊपर ईमान लेकर आए हैं, इस आयत पे, कुरान की आयत है ना, इसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है ना। जब जब कोई और दरगाह पे जाएगा वो इस आयत का इनकार करता है। जब अल्लाह खुद कहता है मैं सुन रहा हूं, तो तुम क्यों जाके उसको सुनाते हो? क्या अल्लाह को गैरत ना आती होगी? कुछ सोचें, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है जब हम औरों को जाके सुनाते हैं कि ये हमारी सुन सकते हैं, ये हमारी कबूल करेंगे, ये हमारा काम कराएंगे। अल्लाह को गैरत ना आएगी कि जब मैं कहता हूं मैं करीब हूं, तुम जिधर भी हो मुझे पुकारो, तुम गारों में हो या समंदरों की तहों में, यूनस अलैहि सलाम मछली के पेट में पुकार रहे, अल्लाह ने वो भी सुन ली। तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनेगा? वो सुनता है और वो जवाब भी देता है। हाँ, मगर बात ये, फल यस्तजीबू ली, तुम भी तो उसकी बात मानो। वल यूमिनू भी, तुम भी तो चाहिए कि वो भी तो ईमान लाएं मेरे ऊपर। ईमान किस बात का? कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला जवाब देता है, और फल यस्तजीबू ली, वो भी मेरी बात माने ना, जो मैं हुक्म देता हूं उनको, वो भी तो उनको कबूल करके उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। तुम भी तो अल्लाह की बात मानो। अपने लिए तो तुम चाहते हो मैं इधर दुआ करूं, हाय कबूल क्यों नहीं हो रही, हाय जल्दी क्यों नहीं हो रही, इतनी देर क्यों हो गई, अभी के अभी मैंने ऑर्डर दिया तो इसी वक्त पूरा होना चाहिए। ये कोई आपके नहीं, किसी को ऑर्डर नहीं दिया, आपने दुआ की है। ये नहीं कि इधर हमने कौन कह दिया तो उधर पूरा हो जाए, तो आप खुदा हैं क्या? अल्लाह ताला के सामने आजजी, अल्लाह की बात मानना, फिर उसके बाद हाथ उठाता है इंसान तो फिर अल्लाह भी सुनता है, तो तुम भी तो मानो बात को। हालांकि ये शर्त नहीं लगाई, ये शर्त नहीं लगाई कि अगर तुम बात मानोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, वरना मैंने नहीं सुननी। लेकिन ये कहा कि लोगो तुम भी तो सुनो, मेरे बंदो तुम भी तो मेरी बात माना करो और मेरे पर ईमान लाओ। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राह रास्त पा जाए। रुश्त जो है ना, वो हिदायत से भी आगे का दर्जा है। रुश्त के अंदर क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचा देना, दुआ मांगते रहो ताकि तुम रुश्त पा जाओ, यानी यही सीधा रास्ता है कि तुम अल्लाह से मांगो तो तुम रुश्त पा लोगे, हिदायत पा लोगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। फल यस्तजीबू ली वल यूमिनू बी को भी याद रखो। दुआओं के ऊपर बहुत लंबा मौजू है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगी दुआ के बारे में लेक्चर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, हमारा टाइम ऊपर हो गया हुआ, तो हम आगे चलते हैं। तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया लैलतस्सियाम, रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना, यानी अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करना, उनके साथ रिलेशनशिप रखना तुम्हारे लिए रातों में जायज हो गया। असल में हुआ ये था कि मैंने जैसे आपको बताया अहले किताब के रोजों में ना खा पी भी नहीं सकते थे, अगर किसी को आंख लग गई है तो उसके बाद उसका रोजा शुरू हो गया और बीवियों के पास भी नहीं जा सकते थे। अब मुसलमानों के लिए अभी कुरान में कोई ऐसे अहकाम नहीं आए थे, वो जस्ट फॉलो कर रहे थे उनके ही पैटर्न को, तो उनको कभी ऐसा हुआ कुछ सहाबा से गलती ये हो गई कि उनसे रात में अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक भी कायम हो गया। अब उनको ये गिल्ट होने लगा कि ये पता नहीं सही है या गलत है, जैसे नहीं अभी इंसान बीच की कैफियत में होता है, अगर ये गलत है तो फिर तो हमने कोई गुनाह कर दिया, हो सकता है ये सही हो सकता है, इसके बारे में तो अभी कुछ बात नहीं आई है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नहीं, तुम इससे पहले ये नहीं था, मना नहीं था, कोई हराम नहीं किया हुआ था कि बीवियों के पास नहीं जाना, लेकिन जस्ट वो उनके ही पैटर्न को उनके ही तरीके को रोजे की फॉलो कर रहे थे। अच्छा, अब क्या अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि रोजे की रातों में तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुल लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। यानी अब लिबास जो एक लफ्ज यहाँ पे आया ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है जो सबसे करीब है इंसान के। आप देखिए ना, हमारा जूता भी दूर होगा, हमारे कोई क्लिप सर में लगाया होगा वो भी थोड़ा दूर होगा, लेकिन लिबास ऐसी चीज है जो सबसे करीबी चीज है, आपके जिस्म के साथ लगा हुआ है, लिबास क्लोजेस्ट है। तो लिबास कह के बताया कि वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास, यानी तुम दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज हो। आप देखें इससे ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं होता इंसान का, जितना मियाँ बीवी का आपस में होता है। यानी एक वक्त वो भी आ जाता है कि जिसमें माँ का रिश्ता अपने बेटे के साथ या बाप बेटी का वो इतना करीबी नहीं होता जिस तरह के मियाँ बीवी का होता है, जब इंसान बच्चे जवान हो जाते हैं तो ये सबसे करीबी रिश्ता है। दूसरे इसके अंदर आप देखें कहा गया हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुन, औरतों औरतें आदमियों के लिए यानी शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए लिबास है, ये नहीं कहा गया कि आदमी तो औरत के लिए लिबास है, औरत आदमी के लिए क्या है जूती है पैर की, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, नहीं इक्वल रखा गया, वो तुम्हारा लिबास तुम उसका लिबास ना। उसको ये नहीं कहा गया तुम तो कटी हुई बनियान हो या तुम तो जूती हो या तुम तो बहुत ही कोई घटिया सी चीज हो, नहीं लिबास। दूसरी लिबास में क्या चीज होती है, हिफाजत। हिफाजत कैसे, देखें एक तो शैतान के वसवास से हिफाजत होती है, इंसान की नजरों की शर्मगाह की हिफाजत होती है। आप देखें शादी से पहले बहुत जगह नजरें जाती हैं, बहुत और चीजें होती हैं, फ्रेंडशिप्स हैं या कुछ, लेकिन शादी के बाद इंसान की इज्जत महफूज हो जाती है, वो अपने शोहर के साथ और शोहर उसके साथ ही जो भी अपनी इंटीमेट बातें होती हैं एक दूसरे के साथ करते हैं, फिर और बाहर के ताल्लुकात सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरह लिबास में देखें आप, जीनत है इंसान के लिए, खूबसूरती है इंसान के लिए, इसीलिए तो हम इतने कपड़े बनवाते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि सारी जिंदगी के लिए बस दो चार जोड़े बनवाए और उसके बाद जब वो खराब हो जाएंगे तो फिर और दो नहीं, हमारी अलमारियां भरी होती है क्योंकि वो जीनत का सामान है हमारे लिए, खूबसूरत से खूबसूरत लिबास पहनते हैं। तो लिबास में खूबसूरती है, नंगेपन में खूबसूरती नहीं है, नंगे होना इंसान की ब्यूटी नहीं है, इसलिए लिबास कहा गया उसको कि जब मियां बीवी एक साथ होते हैं ना तो इस साथ में इस रिलेशनशिप में ब्यूटी है। अकेले मर्द का रहना कि मैंने शादी नहीं करनी, या कोई लड़की का मैंने नहीं शादी करनी, कोई और वजूहात हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बस मैंने नहीं करनी और इसको ही समझना कि बड़ी मैं नेकी का काम कर रही, ये इसमें कोई नेकी नहीं। बल्कि नेकी क्या है, इसके अंदर खूबसूरती ब्यूटी क्या है कि एक दूसरे के साथ हो। फिर लिबास जो है ना सर्दी गर्मी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इंसान को। आप देखें गर्मियों के अंदर हम हल्का लिबास पहनते हैं, सर्दियों में हम बहुत मोटे लिबास पहनते हैं, क्योंकि वेदर से प्रोटेक्शन है, हालात सिचुएशन से। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, एक दूसरे के ऐबों को पे पर्दा डालते हैं। ऐसे हालात के अंदर, ऐसी जो फितने के मौके हैं, वहां से एक दूसरे की प्रोटेक्शन का सामान बनते हैं। फिर वैसे भी नेक बीवी के बारे में कहा गया कि वो अपने शोहर के दीन की भी फिक्र करने वाली होती है, तो वो भी एक प्रोटेक्शन हो गई। इसी तरह आप ये देखें, यानी जीनत भी हो गया, प्रोटेक्शन भी हो गया, हिफाजत प्रोटेक्शन एक ही बात हो गई। एक और चीज जो इसके अंदर आती है वो है यानी ढांपना, कवरिंग। जब इंसान के जिस्म पे कोई दाग धब्बे, कोई ऐसी चीज है, वो छुप जाती है लिबास की वजह से। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं, हर एक दूसरे की बात को जानते हैं कि इस वक्त ये क्या कहता है या क्या करता है, या इसके दिन और रात कैसे गुजरते हैं, घर में कैसा है, जो बाहर वाले लोग नहीं जान सकते। उनका रिश्ता लंबा होता है, बच्चे भी एक टाइम पे नहीं होते और उसके बाद भी वो एक टाइम पे अपने अपने घरों के हो जाते हैं, लेकिन मियाँ बीवी साथ चलने वाले होते हैं। उस वक्त एक दूसरे की एक एक बात उनको पता होती है, एक एक राज पता होता है, एक एक रिएक्शन पता होता है, लेकिन वो उसको ढांपते हैं, ऐबों को उछालते नहीं है पब्लिक में। तो लिबास बन गया ना, ठीक है। इसी तरह लिबास जो होता है ना, वो इंसान के फिटिंग के मुताबिक होता है। अगर बहुत खुला होगा तब भी बदनुमा लगेगा, अगर बहुत टाइट होगा तो इंसान के लिए वो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफू का जो फरमाया ना कि एक जैसा होना चाहिए, यानी दीनी लिहाज से, पसंद नापसंद में कुछ कुछ तो सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एक बिल्कुल जाके छलांग मारी तो बहुत अमीरों के साथ कर लिया, या बिल्कुल अपने से स्टेटस में नीचे चले गए, वहां पे भी फिर नहीं बनती। कि लिबास अपने साइज का ही होना चाहिए। तो इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक है इस चीज को बयान करने के लिए कि लिबास कैसे इंसान के लिए ब्यूटी भी बनता है, प्रोटेक्शन भी बनता है, उसकी इज्जत का भी बाइस बनता है। इंसान एक इज्जत पाता है ना, अपने ऐसा कोई लिबास पहना होता है तो एक इंसान है जो नंगा है वो बेइज्जत होता है, और एक इंसान है जो लिबास पहनता है वो इज्जत के साथ होता है, तो ये इंसान की इज्जत और वकार का भी बाइस बनता है, तो बहुत सारी बुराइयों से भी इंसान को बचा लेता है। तो इसलिए लिबास जो है वो इंसान की जरूरत है। इसी तरह ये रिलेशनशिप, ये मियाँ बीवी का ताल्लुक, ये भी इंसान की जरूरत है, जरूरियात में से है। आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफानकुम। मैंने आपको जैसे बताया कि पहले इसमें ममानियत तो नहीं थी कि एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं कर सकते रोजे की रातों में, लेकिन एक जैसे उन्होंने प्रीवियस अपने उसमें पिछले अधियान में यहूद में यही देखा था कि इसी तरह होता है, वो उसी के ऊपर चलते रहे। लेकिन कभी रातों को कई सहाबा से, जिनमें हजरत उमर भी शामिल हैं, ये चीज हो गई, और इस पे पशेमान भी हुए कि कैसे मेरी बीवी से ताल्लुक हो गया जबकि मैं सो गया था, मेरा तो रोजा अगले दिन का शुरू हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला को पता है तुम्हारी, तुमसे जो खयानत हुई अपने नफ्सों से, यानी तुम्हारे दिल में तो था और तुम्हें लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं, वो गलती हो गई, तो अल्लाह ताला मेहरबान हुआ तुम पे और अल्लाह ने दरगुजर कर दिया तुमसे। फल आना बाशिर होना, तो अब कोई तुम्हारे ऊपर इसमें कोई कोई पाबंदी नहीं है, तुम अब यानी अपने इत्मीनान के साथ अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक कर सकते हो। इससे हमें यह भी पता चलता है कि बाज लोग समझते हैं कि रमजान आने का मतलब ये है कि बस इबादत करें और एक दूसरे के हकूक अदा करने की कोई फिक्र नहीं होती, ना मियाँ बीवी के, ना मियाँ को बीवी की या बीवी को मियाँ शोहर की। वो सोचते हैं कि अब ये नेकी के दिन है, आपको ये चीजों में इंटरेस्ट हुआ है, तो अल्लाह ताला ने तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह ताला ने तो फरमाया फल आना बाशिरुहुन्ना वबतगू मा कतब अल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया इसमें। यानी कतब अल्लाहु लकुम से मुराद क्या है? औलाद, यानी तलाश करो औलाद का हसूल, इसका मकसद होना चाहिए। और ये भी बाज़ उलमा ने कहा कि हाँ, इससे जो भी इंसान को सुकून मिलता है इस
ताल्लुक को कायम करने से जो इंसान को रिलीफ मिलता है, तो वो भी इसमें भी कोई हरज नहीं है। वकुलू वशरबू हत्ता यतबैन लकुम अलखैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर। फिर उसके बाद रोजे की टाइमिंग बता दी गई कि क्या टाइमिंग होगी रोजे की, कब से कब तक रखना है। यानी वो वाला अब खत्म हो गया जो पिछली उम्मतों के लिए था कि अगर सो गए तो रोजा शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तुम खाओ पियो हत्ता, यहां तक कि वाजे हो जाए सफेद धागा स्याह धागे से फजर के। अब ये सहाबा को कंफ्यूजन हुई, और रदी बिन आतिम के बारे में आता है कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक सफेद धागा लिया एक स्याह धागा लिया और अपने तकिए के नीचे रख लिया, रात को उसको देखते रहे कि जिस वक्त जाहिर है इतनी लाइट होगी कि सफेद अलग नजर आएगा और ब्लैक अलग नजर आएगा, तो इसका मतलब है उस वक्त खाना पीना बंद करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मतलब है कि यानी ये जो एक पो फटना जिसको कहते हैं ना, एक एक अंधेरे के अंदर एक पहले सबसे पहले सूरज नहीं ऐसे ही निकल आता, एक पहले लाइन एकदम ऊपर को जाती है, वो जब लाइन आ गई ना वो वाजे हो गई, तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त खाना पीना बंद कर देना। सहाबा कराम खाते पीते रहते थे, फरमाते थे हमारे खाने पीने को बंद करने में और उसके बाद नमाज पढ़ने में 50 आयतों का तक का फर्क डिस्टेंस होता था, यानी खाना पीना खत्म किया और उसके बाद ही नमाज पढ़ लेते थे। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल्लैल, फिर कब तक करना है, रात तक। रात से मतलब क्या है, सूरज जब गुरूब होता है तो रात शुरू हो गई, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम उनके साथ मुबाशरत ना करो इस हाल में कि तुम इतकाफ में हो मस्जिदों में। यानी इतकाफ की बात कभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि इतकाफ भी रमजान में किया जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यानी इतकाफ सारी उम्र इतकाफ किया, जो 10 रातें थी, सिर्फ एक दफा जब उम्महातुल मोमिनीन भी बहुत सारी अपने खैमे लगा के मस्जिद नबी में लगा दिए थे, तो फिर आपने उठा दिया था कि एक दूसरे की नकल में तुम आगे से आगे लगाती जा रही हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये 10 रातों का इतकाफ किया, यानी ये 10 दिन जो आखिर के होते हैं। और कहाँ पे इतकाफ होता है, मस्जिद में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया फिल मसाजिद, औरतों की इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। वजह क्या है, अब हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज जो थी उम्महातुल मोमिनीन भी उनके खैमे भी उनके जो भी टेंट वगैरह वो मस्जिद नबी में ही लगा करते थे। हालांकि तो उनके घर तो बिल्कुल एडजेसेंट थे मस्जिद नबी से, चाहती तो अपने घरों में ही बैठ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिद के अंदर ही इसका एहतमाम हो, इतनी सेफ्टी हो, और वहीं पे जहां पे भी उन्होंने औरतों के लिए इंतजाम रखा हुआ है वहीं पे जाके इतकाफ किया जाए। इतकाफ भी एक बहुत अजर व सवाब वाली इबादत है, इसलिए कि समझ लें लोग तो आते ही मस्जिद में आए नमाज पढ़े और चले गए, लेकिन एक बंदा बैठा ही हुआ है, बैठा ही हुआ, वो जा ही नहीं रहा वहां से, तो अल्लाह के दर पे वो बैठ गया, अल्लाह के घर में वो आके बैठ गया, और वो कहता कि बस अल्लाह मैं तो तेरे दर पे पड़ा हूँ, अब तू ही मेरी हाजतें सुन, तू ही मेरी मुरादें पूरी कर। तो बहुत ही अजर व सवाब वाला ये वो है। और इसके अंदर ये जो हम सोच लेते ना कि अब क्वेश्चंस इतने इसके बारे में आते हैं कि हम क्या करें, अब हमारे घर भी हैं, अब हमने घर भी देखने हैं, तो अगर आपको घरों का इतना मसला है तो फिर आप नहीं करें इतकाफ, जाहिर है फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अभी इतकाफ वो ही लोग करें जो इन जिम्मेदारियों से फारिग हैं या उनके और कोई और संभालने वाला है, तो फिर वो इतकाफ करें। बाकी जो कर सकते हैं जिनके ऊपर और नई चीजें हैं वो करें, बाकी दूसरे लोग बेहतर है कि फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको अजर देगा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का भी, लेकिन वो ये ना हो कि घर वालों को छोड़ के वो इतकाफ के लिए गए में कि ना। और इतकाफ करने वाले की ना जो सोना है ना वो भी इबादत है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बस घर पे आके बैठ गया, उसका सोना भी इबादत, उसका जागना भी इबादत। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि इतकाफ में ही बैठे हुए और साथ अपने फोन पे लगे हुए हैं, उधर टेक्सटिंग हो रही है, उधर मैसेज चेक हो रहे हैं, अब इतकाफ भी ऐसे बन गए हैं, उसमें भी गपशप हो रही है, वहां पे मजलिसें लगी हुई हैं। इतकाफ का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को अलग करके पूरी दुनिया से, जैसे पहले जमाने में रहबानियत होती थी, अब रहबानियत नहीं है, अब इतकाफ है। देखिए ना, इतकाफ में बैठ गए बस इतने दिन के लिए इंसान अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है, सिर्फ अल्लाह के साथ लौ लगाता है, अल्लाह की याद करता है, कुरान पढ़ें, तस्बीहात करें, नवाफिल पढ़ें, कुछ सीख रहे हैं आप, कोई क्लास ले रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं उसके ऊपर। बाकी मस्जिद के अंदर ही आप होते हैं तो जमात से नमाज भी हो रही होती है और अच्छी बातें वहां पे सुनाई दे रही होती हैं, कोई लेक्चर सुन लें, लेकिन गपशप का वो ना बनाए इतकाफ को, एक गपशप की जगह है या एक सोशलाइजिंग की जगह है। ठीक है, इसके बारे में आता है जो बंदा एक एक दिन का भी इतकाफ अल्लाह की खातिर करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें आड़ बना देता है, जिनकी मसाफत कितनी है, आसमान और जमीन के दरमियान की मसाफत से भी ज्यादा चौड़ी है। ये एक दिन के इतकाफ की फजीलत है। तो सोचें जो लोग फिर 10 दिन इतकाफ करें, और अगर नहीं 10 दिन करते, 10 दिन तो मसनून है, अगर इससे कम करना चाहें तो आप एक और एक दिन और रात का भी कर सकते हैं, 2 दिन कर लें, 3 दिन, जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां आपको इजाजत देती हैं उसके मुताबिक कर लें। और घर में आप बैठते हैं तो उसको इतकाफ ना कहें, वैसे आप बैठे हैं अल्लाह की खातिर थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिक्लूड करके आप बैठे में और ध्यान अल्लाह की तरफ लगाया हुआ तो ठीक है, मगर इतकाफ ना उसको कहें कि मैं इतकाफ कर रही हूं। और इतकाफ की उसके अंदर भी जाहिर है आप एक नेक काम में बैठे हैं, उसमें भी गुनाहों से बचना जरूरी है। और इतकाफ करने वाला सिर्फ मस्जिद में ही रहेगा ना, तो वो किसी का जनाजा पढ़ने के लिए जनाजा गा जाएगा, ना किसी बीमार की इयादत करने के लिए उसके घर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बस वहीं बैठेगा, बहुत ही कोई जरूरत है तो वो निकल के जा सकता है, अपने बाथरूम की नीड्स हैं या अपना खाना पीना लेने के लिए, लेकिन अदरवाइज वो उस जगह से नहीं कहीं मूव होगा। तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, तुम इनके करीब ना जाना, ये हदूद हैं, यानी ये जो चाहे एतकाफ की बात है, चाहे रोजे के अंदर जो भी पाबंदियां हैं, ये सारी अल्लाह की हदें हैं, लेकिन ना बाउंड्रीज हैं। अगर कोई बाउंड्री के करीब करीब रहेगा तो क्या होगा, किसी दिन बाउंड्री से उधर भी पाँव फिसल जाएगा। बाउंड्रीज के पास भी नहीं जाना, करीब भी ना जाना। कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, कदालिका युबय्यिनुल्लाहु आयाती ही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला आयात लोगों के लिए ताकि वो बचें। यहाँ पे बचने का मतलब क्या है, यानी वो आग से बच जाएं, वो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने सारी आयतें ना खोल खोल के बयान की हैं, बिल्कुल वाजे कर दी हैं, टाइमिंग बता दी है रोजे के, इतकाफ के बारे में बता दिया, मियां बीवी के रिलेशन के बारे में बता दिया, क्या चीजों की पाबंदी है क्या की नहीं है वो भी बता दिया ताकि तुम बच सको। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, अब एक और आयत आई जिसमें बताया गया कि तुमने क्या चीज तुम्हारे लिए हराम है खाने। देखिए वहां पे रोजे के साथ ही ये आयत आ गई, रोजे में हलाल भी, उससे भी आप पाबंदी है, वो भी नहीं खाते अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की खातिर, यहाँ पे तो हराम खाने से मना किया गया है, तो बताया जा रहा है जब तुम अल्लाह की खातिर हलाल छोड़ देते हो तो हराम छोड़ने में तुम्हें क्या है। दूसरे, ये तुम्हें रोजा तकवा देता है, अब तकवे का पता कैसे चलेगा, तकवा आया भी है या नहीं, वो पता चलेगा कि तुम्हारी कमाई कैसी है, तुम क्या खाते हो, तुम्हारी कमाई में हराम तो नहीं है, ये चेक है जो आपको, यानी किस तरह आपका टेस्ट है कि आप किस तरह, आपको पता चलेगा तकवा है या नहीं, या आप हराम से कितना बचते हैं, ये मेरे अंदर हराम लुकमा ना जाए। तो और तो कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे तकवा चेक किया जाए, मगर हाँ ये जरूर है। तो ना खाओ माल, अपने माल बैनकुम आपस में साथ बातिल तरीके के, यानी जब आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल तरीके से खाने का मतलब क्या है, नहीं ऐसे तमाम हराम तरीके जो अल्लाह ताला ने मना किए हैं, मिसाल के तौर पे चोरी, किसी का माल खा लेना, धोखे में किसी का ऐसे उसको साथ फ्रॉड किया और उसका माल हड़प कर लिया, करप्शन जिसमें पूरी कौम का माल था और उसको कैसे हथिया लिया, यानी चोर दरवाजे कई बने हुए हैं, सूद है, इसी तरह खयानत है, इसी तरह जखीरा अंदोजी है, जखीरा कर लिया और जिस वक्त शॉर्टेज हो गई मार्केट में तो फिर अपनी चीज लाके मार्केट में, मिसाल के तौर पे आटा रख लिया, इतनी बोरियां अंदर जखीरा की हुई है, जब देखा शॉर्टेज हो गई है, लोग बेचारे कुछ भी पैसे देने को तैयार हो गए, तो पहले वो चीज 100 रुपए की थी, अब 1,000 की हो गई है, अब उसको लाके मार्केट में रख दिया, ये है जखीरा अंदोजी, कितनी आम है। मिलावट, रिश्वत, सूद, ये सब बातिल तरीके हैं, जब भी आप झूठ बोल के कोई कमाई लेते हैं ना तो वो बातिल तरीका,
आप ने फरमाया अल्लाह ताला नजरे रहमत भी नहीं करेगा उस बंदे पे जो झूठ झूठी कसम खा के अपना सामान बेचता है। झूठी नहीं नहीं कसम से, ये तो ऐसे नहीं, कसम खुदा की मेरे से कसम ले ले, ये तो इतने की हमारी खरीद भी नहीं, ऐसे नहीं होता बोला। फिर झूठ बोल के जब चीज बेच रहे होते हैं तो कैसे बोले उस चीज के, कहते हैं इसके अंदर तो कोई खराबी नहीं है, तो बिल्कुल सही चलती है, बिल्कुल सही, उसका कोई ऐप बताना ही नहीं। झूठ के साथ खामोश रह सकता है इंसान, कि आप खुद देख लें, आपको अगर सही लगती है तो ठीक है, एज इज ही आपको लेनी होगी, ये कह सकते हैं, मगर झूठ ना बोले। जहां पे भी आप झूठ बोल के कुछ फायदा लेते हैं कि अगर आपने सच बोला तो वो चीज वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, समझ लें वो हराम। चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ है, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट के फंड हैं जिसके अंदर आप झूठ बोल के अपनी उम्र बढ़ा के उनको बताते हैं ताकि आपको वो फंड मिल जाए, या चाहे सोशल सिक्योरिटी है, चाहे वो कोई भी आपने गाने, जहां पे आपने ये एक, मैं आपको छोटा सा तरीका बता दी क्योंकि हर चीज को नहीं मेंशन किया जा सकता, जहां पे आपने झूठ बोल के कोई चीज हासिल की है वहां पर वो चीज लेना हराम हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने उसको धोखा दिया, आप वैसी चीज, हकीकत वैसी नहीं है जैसे आप उसको बता रहे हैं, उसने तो मान लिया लेकिन जो उसने मान के आपको दिया ना वो आपके लिए हराम है, समझ आई। हम कितने बेनिफिट्स ले लेते हैं, कितनी चीजें ऐसे करते हैं जिनमें झूठ होता है, इस तरह ही धोखा किसी को दे देना, कैसे जो चीज वैसी है उसको किसी और तरह दिखाना और वो बेचारा कुछ समझ के लेता है जबकि वो वैसी नहीं होती। अब पता है एक दफा मूसा अलैहि सलाम ने देखा एक आदमी को, लड़का एक था, नौजवान था, वो दुआ मांग रहा था और इतनी उस दुआ के अंदर वो यानी गिरिया जारी कर रहा था ना, इस कदर अल्लाह के आगे फरियादे कर रहा था, इतना रो रहा था कि मूसा अलैहि सलाम कहने लगे, या अल्लाह अगर मैं इसकी कोई चीज पूरी कर सकता तो मैं जरूर करता, कि यानी वो देख रहे थे कि ये इतना तड़पने लगा हुआ, तो या अल्लाह तो इसके इसकी मुराद तो पूरी कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा तुम इसका जाहिर देखते हो, इसका बातिन मुझे पता है कि ये हराम खाता है, हराम खाने वाले की तो दुआ ही नहीं कबूल होती। अल्लाहु अकबर, आज की कमाईयों में बहुत सारा हराम है, बहुत सारे लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दीन को जानने वाले हैं, लेकिन जब कमाई का मामला आ जाता है ना, कोई चीज बेच रहे हैं या कहीं से कोई बेनिफिट ले रहे हैं या कुछ कई मामलात कर रहे हैं, तो उन मामलात करने में जहां में पैसों का मामला आता है वहां पर फिर सारा मामला हो जाता है। और इसी तरह किसी से जबरदस्ती पैसे निकलवाने, ये भी बातिल है, डाका मारना, किसी को कोई नहीं देना चाह रहा, इवन इवन उलमा यहाँ तक कहते हैं कि जब फंड रेजिंग भी करते हैं तो लोगों को इस तरह जिच्चना कर दो कि हमने तो नमाज पढ़ानी नहीं, जब तक आप इतने पैसे ना दें आपको कॉर्नर कर देना, आप खड़े हो जाना, आप तो इतना देते हैं, आप तो इतना कमाते हैं, वो कोई बड़ा कोई आदमी है या कुछ है, और उससे जबरदस्ती वो पैसे लेने, ये भी जायज नहीं है, ये भी बातिल है उनके लिए लेना। इसी तरह हम जब इन मुल्कों में आ जाते हैं तो बाज दफा यहाँ के कानून हमें कुछ सहूलतें देते हैं जिनके जरिए हम कुछ माल ले सकते हैं, मगर जब अल्लाह की शरीयत में वो हराम है तो हम कैसे लें। हम कहते हैं, नहीं जी हमें तो जज साहब ने दे दिया, हमें तो कानून ने दे दिया, हम तो कोर्ट में गए थे, हमने ले लिया। मिसाल के तौर पे किसी की तलाक होती है, वो कहते हैं हाफ हाफ करो, आधा शौहर लेगा आधा बीवी लेगी, कमाता सिर्फ शौहर था, बीवी का बीच में कुछ एक आना भी नहीं था। अब क्या है, हम यहाँ का कानून है तो हम तो लेंगे, हालांकि हमारे दीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं कि तलाक दे तो आदमी को इतनी चिट्ठी भरनी पड़ेगी कि वो आधा दे अपना जितनी है उसकी कमाई। इसी तरह एलिमनी वगैरह यहाँ पे वो कहते हैं तलाक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सारी जिंदगी के लिए कभी तो कह देते हैं, वो उसके क्यों भरे जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अपने बच्चों का खर्चा जरूर देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका कैसे देगा जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, खत्म हो गया ताल्लुक, लेकिन लोग लेते हैं क्यों, इसलिए कि यहाँ का कानून दे रहा है, और ये नहीं सोचते कि ये बातिल है, ये बातिल है। इस तरह आप और कितने तरीके देख ले, आपको पता है आप विरासत के अंदर डंडी मारी गई है लेकिन आप ले लेते हैं, नहीं जी फलाने ने दे दिया, हमारे तो बुजुर्गों ने दे दिया, मुझे तो मिल गया, मुझे क्या उसको मिला कि नहीं मिला, नहीं तो आप बातिल ले रहे हैं ना, उन्होंने चाहे दे दिया, वो अगर गलत कर रहे हैं तो आप कहें कि नहीं ये मेरा हक नहीं बनता, मेरे लिए ये हलाल नहीं है, लेकिन हम खाते हो।
इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया। और तो और बात तो छोड़े, कोई बुजुर्गों की बात तो छोड़े, नबी अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने इवन ये फरमा दिया कि तुम में से कोई एक अगर मेरे पास आता है ना कोई झगड़ा लेके, तो एक होता है चर्ब जुबान होता है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने हक में फैसला करवा लेता है, और मैं उसके उसकी बात को समझ के सच तो उसको मैं कुछ दे देता हूँ कि भाई ये इसका है। तो याद रखो, अगर वो उसका हक नहीं बनता तो वो आग का टुकड़ा ले रहा है। अब चाहे तो ज्यादा ले ले, चाहे तो कम ले ले। बात समझ आई है कि यानी दो बंदे लड़ अपना मुकदमा लेकर आए हैं, जज अगर फैसला एक के हक में कर देता है, हालांकि उसको पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन वो फिर भी ले लेता है और कहता नहीं, जज साहब ने मुझे दिया ना, उन्होंने मेरे लिए फैसला किया। आप सरसर फरमा रहे, अगर मैं भी फैसला कर दू ना इसकी चर्ब जुबानी की वजह से, तो समझ लो आग का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं। यानी वो जिम्मेदार नहीं है जो जज है या जो काजी है, ये लेने वाला जिम्मेदार है। इसको तो पता है ना, ये अपना झूठ बोल के जैसे करके उल्टे सीधे काम करके किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो अपने पैसे ले लेता है, और उसके बाद कहता है मुझे तो कोर्ट ने दिया, मेरा तो हक बनता था, जबकि उसको पता है उसका हक नहीं था। वह तुदलू बिहा से भी पहले ये ला जो है ना, ये दोनों पे आ रहा है, यानी ना पहुंचाओ तुम इनको, ना पहुंचाओ क्या इनके तरफ हुकाम के, लीता कुल फरीक मिन अमवाले नासी बिल इथ, कि तुम हुकाम की तरफ ना डोल डालो, यानी जैसे आप कहें ना कि यानी रिश्वत उनको देना ताकि वो आपके हक में कुछ दे दें, लोगों के माल में से कुछ दे दें गुनाह के साथ, यानी अगर पूरी पब्लिक का माल है कोई, इस तरह हकूमती कोई माल है, उसमें ऐसी करप्शन करना कि किसी को रिश्वत दे के और उससे अपने लिए कुछ निकलवा लेना, किसी जज को रिश्वत दे के अपने लिए कुछ करवा लेना, अपने हक में फैसला करवा लेना, लोगों की जायदादें, या देखें जब ये करप्शन हुकूमतों के अंदर होती है तो कैसे होती है, वो मुझे आके नहीं कोई कहेगा या आपको नहीं कोई कहेगा, वो पब्लिक का माल है सारा, जो हुकूमत के पास सारे फंड्स हैं और जितनी चीजों के अंदर वो इधर उधर करते हैं वो सारी अवाम का माल होता है। अब उस माल के अंदर जब हेरा फेरियां होती हैं, इधर रिश्वत दी उधर काम निकलवाया उधर की उधर, उस सब के साथ खयानत है। तो कहा जा रहा है वह तुदलू भी है ललहुकामी के, ना तो माल खाओ आपस में बातिल के तरीके से, ना डोल डालो ताकि उनको ल्योर करो, उनको फंसा लो, यानी उनको हुकाम को कुछ चारा डालो ताकि वो अब आपके हक में कुछ काम कर दें और आपको लोगों के माल में से कुछ मिल जाए, लेकिन गुनाह के साथ। वह अंतुम तालमून, तुम तो जानते हो ना, हालांकि तुम्हें पता है कि ये हराम है, फिर भी तुम उसको खाते हो ना। तो जब रोजा रख के हलाल को तो छोड़ते हो, तो बाकी टाइम पे हराम से भी नहीं बचते, ये कैसा तकवा है फिर। अल्लाह ताला इन आयात को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जी तिलावत सुने।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.